नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। गृह मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इस पोर्टल के जरिए सहारा में निवेशकों के फंसे पैसे वापस मिलेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस दौरान कहा, 4 सहकारी समितियों का सारा डेटा ऑनलाइन है। ये पोर्टल 1.7 करोड़ जमाकर्ताओं को खुद को रजिस्टर करने में मदद करेगा। इससे उनका पैसा वापस मिलेगा और ऐसा 45 दिनों के भीतर होगा। दरअसल देश भर के लाखों निवेशकों के करोड़ों रुपए सहारा इंडिया में फंसे हुए हैं। इस पोर्टल के लॉन्च होने से निवेशकों को उम्मीद जगी है कि उनके निवेश किए हुए पैसे अब वापस मिल जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं द्वारा वैध दावे पेश करने के लिए मंगलवार को सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। 29 मार्च को सरकार ने कहा था कि सहारा समूह के 4 सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को 9 महीने के भीतर पैसा लौटाया जाएगा। ये घोषणा सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद हुई जिसमें सहारा सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यह उन लोगों के लिए खास दिन है जिनका पैसा सहारा की सहकारी समितियों में कई सालों से फंसा हुआ है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने मंगलवार को हिडनबर्ग रिपोर्ट के दावों पर बात की। ये रिपोर्ट जनवरी 2023 में जारी की गई थी जिसमें अडानी समूह पर कई आरोप लगाए गए थे। गौतम अडानी ने कहा कि हिडनबर्ग रिपोर्ट अडानी समूह की छवि को नुकसान पहुंचाने के मकसद से लाई गई थी और इस रिपोर्ट में गलत सूचनाओं का भंडार था। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट का उद्देश्य ग्रुप की स्टेटस को नुकसान पहुंचाना और अडानी समूह के स्टॉक की कीमतों को कम करके फ़ायदा हासिल करना था। गौतम अडानी ने ये बात ग्रुप की एनुअल जनरल मीटिंग 2023 में कही है। इस दौरान गौतम अडानी ने कहा कि यूएस आधारित शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचाने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था। जनवरी 24 को न्यूयॉर्क की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट में गौतम अडानी को कॉरपोरेट जगत का सबसे बड़ा ठग बताया गया था। रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की कंपनियों पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा था। रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद अडानी समूह को काफ़ी नुकसान भी हुआ था और ग्रुप की रैंकिंग गिर गई थी। अडानी ग्रुप ने हिडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया था और दावा किया था कि कुछ स्वार्थी लोगों ने हिडनबर्ग द्वारा किए गए दावों का फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी, जो कि लाए ही इसीलिए गए थे। विदेशी कोषों की ताज़ा लिवाली तथा अमेरिकी बाजारों को लेकर सकारात्मक रुख के बीच स्थानीय शेयर बाजारों के रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा। बुधवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी एक बार फिर अपने नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए। शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 293.59 अंक चढ़कर दिन में अपने कारोबार के सर्वकालिक उच्च स्तर 67,088.73 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 80.3 अंक के लाभ के साथ नए सर्वकालिक उच्च स्तर 19,829.55 अंक पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स की कंपनियों में एनटीपीसी, इंडसइंड बैंक, इंफोसिस, पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा, विप्रो और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर लाभ में थे। वहीं मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एशियन पेंट्स, टीसीएस, भारतीय एयरटेल और नेस्ले के शेयर नुकसान में कारोबार कर रहे थे। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मंगलवार को शुद्ध रूप से 215.84 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.21% के नुकसान से $79.59 प्रति बैरल के भाव पर था। अन्य एशियाई बाजारों में जापान का निक्की लाभ में था, वहीं दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग नुकसान में थे। विदेशी बाजार में अमेरिकी मुद्रा में मजबूती के रुख के बीच बुधवार को रुपया 8 पैसे की गिरावट के साथ 82.12 प्रति डॉलर पर कमजोर खुला। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि स्थानीय शेयर बाजारों के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने और विदेशी कोषों के सतत प्रवाह से रुपये का नुकसान सीमित रहा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 82.08 पर खुला और फिर 82.12 प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। ये पिछले बंद भाव के मुकाबले 8 पैसे की गिरावट है। रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 82.04 पर बंद हुआ था। इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.07% चढ़कर 100.01 पर पहुँच गया। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट कच्चा तेल वायदा 0.31% के नुकसान से $79.38 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। एशियाई विकास बैंक ADB ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.4% और अगले वित्त वर्ष के लिए 6.7% पर बरकरार रखा और कहा कि मजबूत घरेलू मांग से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मदद मिलेगी। ADB ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक में अद्यतन जानकारी देते हुए बताया कि ईंधन और खाद्य कीमतें घटने के कारण मुद्रास्फीति में गिरावट जारी रहने की उम्मीद है, जो वैश्विक महामारी से पहले के स्तर के करीब पहुंच जाएगी। उसने एशिया की विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए मुद्रास्फीति इस वर्ष 3.6% और 2024 में 3.4% रहने का अनुमान लगाया है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष 2022-23 में 7.2% वृद्धि की। ADB के मुख्य अर्थशास्त्री एल्बर्ट पार्क ने कहा, एशिया और प्रशांत क्षेत्र लगातार महामारी से उभर रहे हैं। ADB ने अप्रैल में अनुमान लगाया था कि सख्त मौद्रिक स्थितियों और तेल की ऊंची कीमतों के कारण चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर घटकर 6.4% रहेगी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।